आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 18 दिसंबर की शाम और घड़ी में 5 बजते ही आप जुड़ गए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के शो में होगा बहुत कुछ, लेकर आऊंगी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर हम साथ मिलकर चर्चा करेंगे और कुछ गाने भी। लेकिन आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और हुई वुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। तो अगले घंटे में सबसे पहले हम सुनेंगे आज के ताजा समाचार। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती लागत के कारण 70% किराएदार कूलिंग हीटिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। विशेषज्ञ किराए के घरों के लिए मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब ये मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है आज के शो में जानेंगे। इसके अलावा हॉलीडे सीजन के दौरान क्रिसमस व्यंजनों का आनंद लेते समय फूड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन काउंसिल ने सुरक्षित और स्वस्थ भोजन के लिए कुछ अहम सुझाव दिए हैं ताकि हर साल होने वाले 4.5 मिलियन से ज्यादा फूड पॉइजनिंग मामलों से हम बच सकें। आज मैं आपके लिए क्रिसमस डिनर को लेकर कुछ बढ़िया टिप्स लेकर आऊंगी जो कि हमारे साथ बांटेंगी न्यूट्रिशनिस्ट मुबीना जामदार। साथ ही आज आपको मिलवाऊंगी विक्टोरियन मल्टीकल्चरल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस के ऑनर रोल में शामिल होने वाले सनी दुक्कल के साथ। उनसे हम खूब सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि उनका ये जो सफर था ये कैसे शुरू हुआ। इसके अलावा बोंडाई हमले से संबंधित एक अपडेट भी हम आप तक लेकर आएंगे। आज मेरे पास कोई खास सवाल तो है नहीं, लेकिन हाँ, शो से संबंधित कोई भी संदेश या सुझाव यदि आपके पास हो तो 04397997667 पर आप मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि आपके संदेशों का मुझे इंतजार रहेगा। और भी खूब सारी बातें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। फेडरल सरकार नफरत विभाजन और कट्टरवाद के प्रसार से लड़ने के लिए नए कानून तैयार करेगी जो कि बोंडाई बीच में हुई सामूहिक गोलीबारी के बाद लागू होंगे। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने कहा है कि न्यू साउथ वेल्स पुलिस द्वारा आतंकवादी हमला माने गए हैनुका कार्यक्रम में 15 लोगों की हत्या ने ये दिखाया है कि यहूदी विरोधी भावनाओं और नफरत से लड़ने के लिए और अधिक कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं फेडरल सरकार का कहना है कि उसका इरादा प्रवासन कानूनों को मजबूत करने का है ताकि ऐसे लोग जिनके एंटी सेमिटिक दृष्टिकोण हैं, वे ऑस्ट्रेलिया यात्रा या प्रवास न कर सकें। असिस्टेंट इमिग्रेशन मिनिस्टर मैथ सिल्विट का कहना है कि प्रवासन नीतियों की समीक्षा सरकार की बोंडाई में रविवार को हुए हमले के प्रति प्रतिक्रिया का हिस्सा है और पूरी प्रतिक्रिया आगामी दिनों और हफ्तों में जारी होने की संभावना है। बोंडाई बीच में रविवार को हुई सामूहिक शूटिंग में जीवित बचे संदिग्ध नवीद अकरम पर 59 अपराधों का आरोप लगाया गया है जिनमें 15 हत्याओं के मामले और एक आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने का मामला शामिल है। 24 वर्षीय नवीद अकरम इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिसमें उनके 50 वर्षीय पिता साजिद अकरम पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। आपको बता दूं कि बोंडाई बीच नरसंहार का सबसे छोटा शिकार आज यानी गुरुवार को दफनाया जा रहा है जबकि जांचकर्ता एक बंदूकधारी के खिलाफ अपने मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। 10 वर्ष की मटिल्डा जिसे उसके स्कूल ने खुशमिजाज बताया है उन 15 लोगों में शामिल थी जिन्हें 2 बंदूकधारियों ने हनुका उत्सव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट से झूठी आतंकवाद संबंधी दावों को फैलाने के लिए सार्वजनिक माफी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये गलत जानकारी बुधवार 17 दिसंबर की शाम सामने आई जब मीडिया आउटलेट्स ने गलत तरीके से बोंडाई बीच हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ा था। वहीं मैटिल्डास की कप्तान सैम केर अपने बड़े खेल प्रदर्शन में लौट चुकी हैं। उन्होंने विनिंग गोल करके चेल्सी को 2-1 की वापसी जीत दिलाई और महिला चैंपियन लीग क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचाया। जर्मनी में अपने शानदार हेडर गोल से केर पहले ऑस्ट्रेलियाई और फिर दूसरी चेल्सी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने चैंपियंस लीग में 20 गोल मारे हैं। बात करें भारत की तो दिल्ली एनसीआर इस समय घने कोहरे की चपेट में है। विजिबिलिटी घटने से 22 से ज्यादा ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई कई घंटे देरी से चल रही हैं। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी काफी घना कोहरा है जिससे विमानों को टेक ऑफ और लैंड कराने में परेशानी हो रही है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश। ऑस्ट्रेलियाई घरों में कूलिंग और हीटिंग का खर्च कॉस्ट ऑफ लिविंग से जूझ रहे लोगों के लिए काफी ज्यादा है। ऐसे में 70% किराएदार अपने घरों में कूलिंग या हीटिंग चलाते ही नहीं है। ये जानकारी एक सर्वे से सामने आई है। विशेषज्ञों का ऐसे में कहना है कि किराए के घरों के लिए मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी लागू होना बेहद जरूरी है क्योंकि ज्यादातर किराए के घर सही तरीके से इंसुलेट नहीं होते हैं और हीटिंग और कूलिंग उपकरण भी अधिक बिजली खर्च करवाने वाले होते हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है और आखिर मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी लागू कैसे की जा सकती है।
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूँ शशि कुमार। ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ आ चुकी है और जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे घर को ठंडा रखने का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कॉस्ट ऑफ लिविंग से परेशान आम लोग ऊर्जा के खर्च में कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर बिजली के महंगे होने की वजह से लाखों किराएदार अपने घरों में हीटिंग या कूलिंग का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। यह जानकारी एनर्जी कंज्यूमर्स ऑस्ट्रेलिया की हाल ही में जारी कंज्यूमर एनर्जी रिपोर्ट कार्ड में दी गई है। इस सर्वेक्षण में शामिल 1428 किराएदारों में से 70% लोगों ने कहा कि महंगी बिजली के कारण वे अपने घरों में हीटिंग या कूलिंग का इस्तेमाल करने से बचते हैं। वहीं 40% किराएदारों ने कहा कि गर्मी के दिनों में वे एयर कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इससे बिजली का बिल काफी बढ़ जाता है, जबकि ठंडे दिनों में हीटिंग का इस्तेमाल नहीं करने वाले लोगों का आंकड़ा 32% है। देश के नॉर्दर्न टेरिटरी जैसे गर्म इलाकों में यह समस्या और भी अधिक है क्योंकि वहां के अधिकांश किराएदार एसी या हीटर के इस्तेमाल से झिझकते हैं। इसका कारण यही है कि इसके इस्तेमाल से उनका बिजली बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एनर्जी कंज्यूमर्स ऑस्ट्रेलिया के एनालिसिस एंड एडवोकेसी एग्जीक्यूटिव मैनेजर एस्ली ब्रेडसॉ का कहना है कि हमारे सर्वेक्षण के नतीजों का निष्कर्ष है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में किराए की प्रॉपर्टी के लिए मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड लागू होना चाहिए क्योंकि किराएदारों का कहना है कि उनके घरों में आने वाला बिजली का बिल उसी आकार के दूसरे घरों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। वहीं रिसर्च फर्म सेक न्यूगेट द्वारा किए गए एक अन्य सर्वेक्षण में पाया गया कि 65% प्रतिभागी किराएदारों ने घरों के लिए मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड का समर्थन किया और जवाब देने वाले आधे लोगों ने कहा कि इसके लिए अगर मकान मालिकों को आर्थिक मदद की जरूरत हो तो सरकार को अपग्रेड करने के लिए फंड देना चाहिए। वहीं 7% प्रतिभागियों ने यह भी कहा कि अपग्रेड करने के खर्च में किराएदारों को भी अपना हिस्सा देना चाहिए। तो आखिर यह मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी है क्या? मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड में घर में सही तरीके से इंसुलेशन करना, हवा के रिसाव को रोकना और कम बिजली खर्च वाले घरेलू उपकरण लगाना शामिल है। ईसीए के आंकड़ों से पता चलता है कि किराए पर चढ़ाए गए घरों का इंसुलेशन मकान मालिकों के घरों की तुलना में केवल 1/3 होता है। क्लाइमेट वर्क सेंटर की प्रमुख गिल आर्मस्ट्रांग कहती है कि हम सब जानते हैं कि किराए के घरों की हालत सबसे खराब होती है और उसमें रहने वाले किराएदार उन्हें ठीक नहीं करवा सकते हैं, इसलिए मकान मालिकों को एक न्यूनतम मानक के हिसाब से घर ठीक करवाने की बाध्यता होनी चाहिए और इसे सभी स्टेट्स में लागू किया जाना चाहिए। ईसीए की मांग है कि लीज के समय घर की ऊर्जा दक्षता की रेटिंग बताना अनिवार्य हो। इसके लिए 1 से 10 तक की रेटिंग दी जा सकती है। अगर रेटिंग 0 से 1 के बीच है तो वह घर एक टेंट के बराबर है, जबकि अगर रेटिंग 10 दी गई है तो इसका मतलब है कि वह घर ऊर्जा दक्षता के हिसाब से बिल्कुल सही है, यानी बाहर कैसा भी मौसम हो घर का तापमान हमेशा अनुकूल रहेगा। सिडनी में रहने वाले कम्युनिटी लीडर अब्बास रजा अलवी का कहना है,
देखिए इसमें बहुत अच्छी बात है और रिसर्च में जो आ रही है बहुत सही है, लेकिन इसमें आपको दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा कि जो लोग किराए पे मकान में रह रहे हैं वो चाहते हैं कि कम से कम किराए में उनको मकान मिले, और जो लोग किराए में उनको मकान दे रहे हैं वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा किराए में उनको मकान दिया जाए, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो दोनों साइड पे इस तरह से काम करेगी। अब अगर आप इक्विपमेंट की बात करें तो वहां पे एक कॉस्ट फैक्टर आ जाता है, चाहे एयर कंडीशन चेंज होना है 3 स्टार से 5 स्टार पे जाना है, या वॉशिंग मशीन चेंज होनी है, या दूसरे इक्विपमेंट जो एनर्जी को यूज कर रहे हैं वो चेंज होने हैं, बिल्कुल करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा रूल बनाना चाहिए और इसके लिए कुछ ग्रांट गवर्नमेंट ने देनी चाहिए, कुछ सब्सिडीज ही गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इससे इंकरेजमेंट मिलेगा, जो मकान मालिक होंगे उनको भी इंकरेज मिलेगा, चलो हम इस बात को खुद ही कर लें। कुछ तो मकान मालिक ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट में बिलीव करते हैं, वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन यह है कि जो इक्विपमेंट्स का अपग्रेडिंग है, जो नेसेसरी पार्ट है, वो सिर्फ किराएदारों के लिए नहीं है, वो जो लोग मकान में रह रहे हैं उनके लिए भी है। खुद भी जो लोग मकान में रहते हैं ओन करते हैं वो भी इस बारे में 10 बार सोचते हैं कि इक्विपमेंट को अपग्रेड करें या ना करें। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो खुद मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगा, उन कंपनीज को भी, और दूसरा यह है कि वो इक्विपमेंट भी चेंज होगा जिससे कम एनर्जी यूज होगी, तो दोनों तरह के बेनिफिट्स में मुझे नजर आते हैं।
ब्रेडसॉ कहते हैं कि मेरे हिसाब से अगर हम ऑस्ट्रेलिया के घरों की औसत रेटिंग निकालें तो यह 1.8 के आसपास होगा, जो कि टेंट बराबर ही है, और ऐसे घर ज्यादातर किराए पर चढ़े हुए हैं। आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम और बिगड़ेगा, ऐसे में मिनिमम स्टैंडर्ड लागू करना बहुत जरूरी है। आर्मस्ट्रांग का कहना है कि मिनिमम स्टैंडर्ड लागू करने से बिजली के बिल में काफी बचत होगी, जो कि सालाना $2,000 तक हो सकती है, हालांकि यह घर के आकार पर भी निर्भर करता है। वे कहती हैं कि घरों का इंसुलेशन ठीक करने से शोर भी घर में कम आएगा और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा, साथ ही लोगों का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, अलवी का कहना है।
और जो पुराने मकान है मैं समझता हूँ उसके लिए सर्टनली कुछ ना कुछ सिस्टम गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि भाई 30 साल का 20 साल का अगर मकान है तो उसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट करे जा सकते हैं और उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए किस किस्म की सब्सिडी प्रोवाइड करी जा सकती है, किस तरह का इनकरेजमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो उससे ये होगा कि जो ओनर होगा उसको भी अच्छा लगेगा कि ठीक है मैं इस बात को इम्प्रूव करता हूँ और इसमें एनर्जी की सेविंग भी होगी, प्लस मेरे पास भी पूरा पैसा उतना नहीं जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी हो जाता है। अगर आप इस समय देखें बड़ा एक सोलर सिस्टम आप रूफ पे लगाना चाह रहे हैं, नया सोलर सिस्टम, तो रूफ पे सोलर सिस्टम लगाने के लिए इजीली आप बात करते हैं आज के दिन में $16,000-$18,000 की। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देके उसको $6,000-$7,000 में लेके आ रही है, तो लोग लगा भी रहे, उससे एनर्जी सेव भी हो रही है। तो यही चीज जो पुराने ओल्ड हाउसेस है उसमें की जा सकती है।
आर्मस्ट्रांग कहती है मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड लागू होने का इंतजार ना करें। अगर आप किराएदार हैं और आपको लगता है कि आपके घर का बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो घर की एनर्जी एफिशिएंसी ठीक करवाने के लिए अपने मकान मालिक से बात करें, और बेहतर होगा कि क्यों बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, घर में कहां कहां कौन कौन सी कमियां हैं, इसे विस्तार से लिखकर अपने मकान मालिक को भेजें, साथ ही अपने बिजली बिल की कॉपी भेजें और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है यह भी लिख कर दें। वे बताती हैं कि फेडरल सरकार की वेबसाइट योर होम पर भी मकान मालिकों को क्या करना चाहिए इसे लेकर कई सलाह और जानकारियां उपलब्ध है। SBS हिंदी से मैं हूं शशि कुमार, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।
तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आए SBS हिंदी से शशि कुमार जी। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लौटकर हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और भी और कई सारे मुद्दों पर आपके लिए खबरें लेकर आऊंगी। सुनते रहें SBS हिंदी। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो वक्त हो रहा है 5:17, और वैसे तो आप मेरे किसी भी कार्यक्रम में देरी से नहीं आते हैं, लेकिन यदि आप आज के कार्यक्रम में मेरे साथ जरा देरी से जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि SBS हिंदी के फेसबुक पेज और वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर आप हमारा कोई भी कार्यक्रम या अंश एक बार फिर से सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ कुछ बढ़िया सी टिप्स क्रिसमस फूड सेफ्टी को लेके। तो हॉलीडे सीजन अपने चरम पर है और हम तैयार हैं अपनी क्रिसमस के दौरान मिलने वाले अलग अलग प्रकार के व्यंजनों से अपनी थाली भरने को। फूड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन काउंसिल ने आने वाले दिनों में सुरक्षित और स्वस्थ भोजन का आनंद लेने के लिए कुछ सुझाव साझा किए हैं, जिनका उद्देश्य हर साल होने वाले 4.5 मिलियन से अधिक फूड पॉइजनिंग केसेस को रोकना है। क्या है ये क्रिसमस डिनर टिप्स और क्या कहती हैं न्यूट्रिशनिस्ट मुबीना जामदार इस मुद्दे पर, आइए जानते हैं। दोस्तों, क्रिसमस सीजन नजदीक है और साल के इस खास समय पर हमारे खाने की प्लेट अलग अलग व्यंजनों से भरी रहती है, लेकिन इस खान पान के साथ कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और ऑस्ट्रेलियन फूड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन काउंसिल ने इस सीजन का सुरक्षित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य हर साल फूड पॉइजनिंग से 4.5 मिलियन से अधिक मामलों को कम करना है। यदि आप भी इन अधिकांश लोगों की तरह हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों में आप अक्सर साथ मिलकर भोजन करते होंगे और आपके पसंदीदा व्यंजनों में टर्की और चिकन भी शामिल होंगे, लेकिन हर दो में से एक व्यक्ति एक ऐसी गलती कर रहा है जो आपको भी परेशान कर सकती है। जानते हैं वे क्या है। फूड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन काउंसिल की CEO लिडिया बुचमैन एक ऐसी गलत धारणा को दूर कर रही हैं जो काफी आम हो सकती है।
And a huge number of people, 1 in 2 people, adults, cook raw chicken, said they actually wash it before they cook it. Now this is really risky because firstly, any poultry is washed in processing, so you don't need to do it. But if you wash it, you're going to splash it right around the kitchen, and you're going to get bacteria anywhere, particularly salmonella, which gives you a really nasty form of food poisoning.
वे ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि इस साल फूड पॉइजनिंग से पीड़ित लोगों की संख्या औसत 4.6 मिलियन से कम हो, क्योंकि ये आंकड़े कोई मजाक नहीं है। इससे अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष लगभग $3 अरब का नुकसान हो रहा है और क्रिसमस एवं नए साल की अवधि में इसके मामलों में वृद्धि देखी गई है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि फूड इलनेस आम लोगों की सोच से कहीं अधिक खतरनाक हो सकती है।
It's not just a funny tummy, it really is nasty and it can make you really ill and it can be life threatening if you've got a poor immune system or if you're pregnant or if you're frail and elderly.
यदि आपको रोस्ट खाने का मन हो तो क्रिसमस हैम एक और यूरोपियन परंपरा है जिसे दक्षिणीय गोलार्ध में भी अपनाया गया है। आप हैम को गर्म या ठंडा खा सकते हैं, लेकिन बुचमैन सहित विशेषज्ञों का कहना है कि ये बासी नहीं होना चाहिए। यदि ये हैम पैक किया हुआ है तो इसके यूजेज की एक्सपायरी डेट अवश्य देख लें और उसका पालन करें। लिडिया कहती हैं कि याद रखें कि हैम कुछ दिनों के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं।
Wrap it up in either get something called a ham bag, which is sort of basically just a cloth bag you can put it in, or a clean cloth. Soak that cloth in a mixture of water and vinegar. And so it's about a liter of water with 2 tablespoons of vinegar in it. And keep that cloth moist so it doesn't dry out and keep it in the fridge and change it every 3 days or so.
खाना बनाते समय तापमान का खास ध्यान रखें। मांस को 75 डिग्री पर पकाएं और थर्मामीटर से तापमान की जांच करें। आपको याद दिला दूं कि इसमें कीमा और सॉसेज भी शामिल है। वहीं फ्रिज का तापमान 5 डिग्री पर बनाए रखें, ये जरूरी है। इसलिए आपको हर कुछ घंटों में तापमान जांचने के लिए थर्मामीटर की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने बढ़िया क्वालिटी की शैंपेन या वाइन खरीदी हुई है तो उसे फ्रिज के सबसे ऊपर वाले शेल्फ में न रखें, बल्कि बाहर निकाल कर बर्फ की ट्रे में डाल दें। बिना खुली बोतलों में बियर और वाइन लंबे समय तक खराब नहीं होती है, इसीलिए इनसे बीमारियों का खतरा नहीं होता जब तक आप इनका बहुत ज्यादा सेवन न कर लें। यदि आप किसी बड़ी फीस्ट की मेजबानी कर रहे हैं तो अपने फ्रिज की कीमती जगह खाने के लिए बचा कर रखें और खाने को रखने का एक ऑर्डर रखें। सिर्फ जूस या डेयरी पदार्थ ही फ्रिज में रखें, बाकी पेय पदार्थ फ्रिज में न रखें। इन टिप्स की माने तो सबसे ऊपर वाला फ्रिज का शेल्फ सलाद के लिए है, उसके नीचे चीज और डिप्स रखें और सबसे नीचे कच्चा मांस या चिकन भी आप रख सकते हैं ताकि वे किसी और चीज को दूषित न करे। यदि आप शराब नहीं पीते हैं और मांस भी नहीं खाते हैं तो बचा हुआ पनीर और डिप बैक्टीरिया के पनपने का अच्छा मौका होता है। होस्ट को हर घंटे फ्रिज से इन व्यंजनों को ताजा करना होगा और जरूरत से ज्यादा परोसना एक गलती हो सकती है।
The idea is to put them out in small servings at a time. It's a real risk if you say put out a dip or you've got a brie there or something, and then you get more stuff out of the fridge and you put it on top. So put out small amounts, leave the rest in the fridge, and replace it every hour or so.
बात करें वीगन्स की, तो गर्मियों में सलाद और सब्जियों के मामले में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना उन्हें जरूरी है। पनीर और चटनी की तरह इन्हें भी ज्यादा देर तक बाहर नहीं रखना चाहिए और गर्मी में ये आसानी से खराब हो जाते हैं। ऐसे में बुचमैन कहती हैं कि हम स्वच्छता के नाम पर एक और बड़ी गलती कर रहे हैं, ग्लव्स पहनना।
So we actually think it's better if you just wash your hands quite often. And you need to wash your hands before you handle food or if you've been handling risky foods like raw meat and raw poultry.
सबसे बड़ी टिप ये है कि जरूरत के हिसाब से ही सामान खरीदें, जरूरत से ज्यादा नहीं। इससे खाना खराब होने का कम खतरा होता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा बचा हुआ खाना है तो इसका एक उपाय है, उसे टेस्ट करके यूं ही न छोड़ दें बल्कि उसे फ्रीज कर दें। ऐसे कम खाना बर्बाद होगा, फूड पॉइजनिंग के गंभीर मामलों की संभावना भी कम होगी और जब आपको रेस्ट की जरूरत हो तो डॉक्टर या अस्पताल में कम समय बिताना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन मुबीना जामदार का इस पूरी बात को लेकर क्या सोचना है।
कई चीजें हैं, जब हम भारत से यहाँ आते हैं तो हमारी कई चीजें परिवर्तन हो जाती है। हमारे हेल्प नहीं होती, जॉइंट फैमिली की हेल्प नहीं होती, हमें घर के कामकाज में हेल्प नहीं होती, तो हम ज्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं अपने शरीर को, अपने सेहत को, और मानसिक तनाव भी अक्सर बहुत ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू पीपल लिविंग इन इंडिया। तो उस सब के रहते हुए ये देखा गया है कि जो भारतीय लोग जो विदेशों में बसते हैं उनमें डायबिटीज और हृदय की बीमारियों की प्रवृत्ति ज्यादा होती है इन सब के रहते हुए। तो खान पान में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। ये सब तो होता ही, खान पान में भी बदलाव आता है क्योंकि हम नई नई रेसिपियां ट्राई करते हैं। जो रेसिपी हम अक्सर ट्राई करते हैं वो पॉपुलर रेसिपीज होती है, वो ट्रेडिशनल नहीं होती। वो अगर आप उनके मूल, उनकी जो मूल रेसिपियां देखें उसमें ज्यादा घी तेल का इस्तेमाल नहीं होता। उन लोग साग सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, हेल्थी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, मगर पॉपुलर रेसिपीज में वो सब नहीं होता। जैसे पिज्जा, बर्गर, कई तरह के पास्ता, ये सब हाई फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट, नो कोई प्रोटीन नहीं होता, कोई सब्जियां नहीं होती। तो वो सब हम जब वो सारे रेसिपीज को हम जब अपनाते हैं, जानकारी की कमी की वजह से हम हमारी जो हेल्थी डाइट, ट्रेडिशनल इंडियन हेल्थी डाइट है, वो रिप्लेस हो जाती है इन फूडों से। और ऑफ कोर्स आप अलग अलग देशों की रेसिपियां अपना सकते हैं, मगर आप उसकी मूल रेसिपियों को जानने की कोशिश करें जो ओरिजिनली हेल्थी है, ना कि ये पॉपुलर रेसिपीज। जनरली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, आप आम को सर्दी में भी खा सकते हैं, गर्मी में भी खा सकते हैं। अपनी बॉडी में जो गर्मी आती है वो आती है, अपना शरीर खुद पैदा करता है, किसी खाने से अपने शरीर में गर्मी नहीं आती है। कहते हैं शारीरिक ऊर्जा या मेटाबॉलिज्म, ये अपने जीवन की ऊर्जा है, ये कम कभी नहीं हो सकती। अगर ये कम हो गए तो वी आर गॉन, वी आर डेड। बॉडी टेम्परेचर जो बॉडी जो मेंटेन करता है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली विद इन दैट टेम्परेचर, वेरी नैरो रेंज बॉडी को मेंटेन करना होता है। फ्रूट का ही, हर फ्रूट में विटामिन सी होता है और हर वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आप उससे बच सकते हैं। जैसे आपने आम का कहा, तो जैसे गर्मियों में आम इंडिया में बहुत मिलता है तो हमें वो ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन ई क्या होता है, वो पूरे साल के लिए आपको स्टोर करता है बॉडी के अंदर। सारे साल की विटामिन ए की जो जरूरत है वो आप गर्मी के वक्त आम से आप अपनी पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि सारे सीजनल फूड हमें फ्रूटों का हमें इस्तेमाल करके हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। मगर ऑस्ट्रेलिया में हम लकी हैं कि हमें सारे फ्रूट्स मिलते हैं, तो इसके लिए मैं ये सलाह दूंगी, वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज आप ना खाएं, सेम फ्रूट आप ना खाएं, वैरायटी सब एक्सप्लोर कीजिए। दुनिया का फल फ्रूट यहाँ मिलता है, सबको आप एक्सप्लोर कीजिए और हर रोज आप नई चीज खाइए।
SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस अंश के माध्यम से आपको भी अपने क्रिसमस डिनर के लिए कुछ बढ़िया सी टिप्स मिल गई हूँ। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहें, लौटकर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपको मिलाऊंगी सनी दुग्गल से। अब ये कौन है और इन्हें किस चीज के लिए बहुत ही बड़ा सम्मान मिला है, ये सब कुछ जानेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो बोंडाई बीच गोलीबारी हमले के बाद सिडनी का भारतीय समाज एक श्रद्धांजलि सभा में साथ आया। सामाजिक एकजुटता की अपील के साथ साथ लोगों ने नम आंखों से पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट वैशाली जैन के साथ।
बीते रविवार को बोंडाई बीच पर हुए नृशंस गोलीबारी के हमले के बाद से समुदाय शोकाकुल है। इस हमले में कम से कम 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि कई घायल अब भी अस्पताल में हैं। पुलिस और सरकार ने इस हमले को आतंकी हमला घोषित किया है। ऐसे में सिडनी के हैरिस पार्क में भारतीय समुदाय के सदस्य साथ आए और हमले से प्रभावित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर फेडरल सांसद एंड्रयू चार्ल्टन और राज्य सांसद डोना डेविस भी मौजूद रहे। SBS हिंदी से बात करते हुए सांसद एंड्रयू चार्ल्टन ने कहा कि
A few things people can do to help is one, call up any member of the Jewish community that you know and put your arms around them, tell them how much we care for them and how much we feel for them and how much solidarity we have with them. Second thing people can do is to give blood. There's still a great need for blood donations and there are centres around Sydney, including here in the Parramatta area where people can give blood. And third, we need to come together as a country, come together and say that this is not okay in our country and do everything we can to stop it from ever happening again.
समुदाय के एकजुट रहने पर उन्होंने आगे कहा कि
Police have very clear information guiding people on what to do. They can follow the advice of police. And I think we've had very strong leadership from the Prime Minister and from Premier Minns, both explaining to people all the steps that the government is taking to address this issue right now. Steps that have been taken and steps that will be taken to make sure that Australians feel safe in this country.
वहीं राज्य सांसद डोना डेविस ने भी समाज से शांति की अपील की है।
The very fact that our local community wants to come together at such a sad and tragic time really speaks volumes because our community is the most diverse in the whole of this state. You know, we have people that have come to live in Parramatta from all corners of the globe and they came here for a safe and happy life and that's what we as a community wanted to be able to deliver for everybody and we want to ensure that events like the shocking events at Bondi with the attack on Sunday are not repeated in this country.
इस श्रद्धांजलि सभा के दौरान कई लोगों ने अपने विचार सामने रखे। पैरामाटा से राजवंत सिंह का कहना रहा कि
जो भी विक्टिम्स हैं और उनकी फैमिलीज हैं तो परमात्मा उनको परिवार को स्ट्रेंथ दे क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है और जो कम्युनिटी है वाइडर कम्युनिटी है उसको भी बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है सो दैट हम एक साथ होके तो उसका लॉस हम बियर कर सके।
वहीं समुदाय सदस्य अनिरुद्ध ढांडा ने कहा कि
जो बोंडाई में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यवश हुआ। आज तक मैं ये समझ नहीं पाया हूँ कि ऐसा क्यों होता है और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी विजिल किया है इस डेट इज थोड़ा बहुत हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है जो हम लोग सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा समाज को तो खुद ही देखना है कि हम सभ्य समाज के लिए इंडिया ये भारत से इधर उठ कर के आए हैं और अपना ही समाज है, और उसके अंदर जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो दुर्भाग्यवश।
पारामाटा की स्थानीय काउंसलर टानिया रफूल भी इस श्रद्धांजलि सभा का हिस्सा रही। शोक प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि समुदाय को इस समय एकजुट होकर खड़े होने की आवश्यकता है।
The vigil that was held today was heartwarming. It was appropriate. It was fitting. It was a reflection of the beautiful, empathetic community that we have here in Harris Park. I think a lot of the local community, like myself, are feeling upset, are feeling angry, and quite confused. And I think the best way to address that is to come together as one. Humanity will always prevail. There is always more that unites us as a community than divides us.
वहीं कम्बरलैंड पुलिस कमांड से सर्जेंट एम जोन्स ने समुदाय से इस समय पर गलत जानकारी से बचने का आग्रह किया है।
The best way is to attend your local police station and report it to the constable at the desk, the front counter. What I do encourage is don't spread misinformation. There is a lot of it going around at the moment. Don't believe everything you see on social media. It is often put out there by people trying to stir things up for no good reason, so to speak. So do report it to your local police if you think there is some kind of racial division going on, or hatred, or any kind of hate speech and that type of stuff.
वहीं पारामाटा की राज्य सांसद डोना डेविस ने भी अब लोगों से विश्वास बनाए रखने का आग्रह किया है।
I'm when the police are doing such an incredible job to investigate the Bondi attack, it's really important that they secure any information that people have from that day, whether or not it's from cameras that they had, whether it's from their cars. We need all of the information that we can gather. We know that there are people in the community that are spreading misinformation, and it has to be stopped because this does nothing good for anyone. It only harms people. And we want to be kind and sharing kindness at this time, and it's really important that we do that together. I'm really proud to represent Parramatta because we've been through a lot of very difficult times here in our own community, whether or not it has been with family and domestic violence, or with people having bad experiences with abuse and verbal abuse, and there's no place for any of that. But whatever happens in our communities, it's so important that people report that, and they need to report it to the police. There's many methods they can use. They can go to Crime Stoppers, they go to the police station, they can go online and report it. But it's so important that if there is any concern about an individual or an event that has happened, that it is reported.
इस बीच राष्ट्रीय मंत्रिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया के गन कानूनों को कड़ा करने का आह्वान किया है। रविवार को हुए इस गोलीबारी हत्याकांड में कम से कम 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि कथित बंदूकधारियों में से एक के पास हथियार रखने का लाइसेंस था और 6 बंदूकें थी। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि देशभर में मंत्रीगण और अटॉर्नी जनरल साथ मिलकर आम जनता के हथियारों तक पहुंच को सीमित करने के लिए कदम उठाएंगे। न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर ने प्रण लिया है कि राज्य के बंदूक कानूनों को देश के सबसे कड़े नियम बनाएंगे। इस पर चर्चा के लिए आगामी 22 और 23 दिसंबर को राज्य संसद को वापस बुलाया गया है। यदि आप या आपके किसी परिचित को सहायता की आवश्यकता है तो लाइफलाइन क्राइसिस सपोर्ट से 1-3-1-1-1-4 पर संपर्क करें। सुसाइड कॉल लाइन सर्विस 1300-659-4-6-7 पर संपर्क किया जा सकता है, और 5 से 25 वर्ष के बच्चों और युवाओं के लिए किड्स हेल्पलाइन से 1800-55-1800 पर संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए beyondblue.org.au और lifeline.org.au पर जाएं। SBS हिंदी से आपके लिए इस खबर को प्रस्तुत किया वैशाली जैन ने।
तो दोस्तों इसी पर एक संदेश आया है चेतन शाह जी की ओर से, सिडनी से लिखते हैं, हाय भव्या, सिडनी निवासी और नियमित श्रोता होने के नाते मैं रविवार को बोंडाई बीच पर हुए आतंकी हमले से बेहद दुखी हूं, जिसमें हनुका उत्सव के दौरान 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई। अहमद अल अहमद की वीरता ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी मिसाल है, लेकिन हम सिर्फ व्यक्तिगत साहस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए हमें व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, साथ ही उस खुले समाज को भी बचाना होगा जिसे हम संजोते हैं। कृपया अपने शो में इस बात पर चर्चा जारी रखें। हमारे समुदाय को इस त्रासदी को मिलकर समझना होगा और सार्थक सुधारों के लिए प्रयास करना होगा। तो ये संदेश हमें भेजा गया है सिडनी से चेतन शाह जी की ओर से। आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करूंगी और कोशिश करूंगी कि इस मुद्दे पर हम अलग अलग एंगल्स से आपके लिए जो खबरें हैं वो लेकर आते रहें, और साथ ही इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट है वो एसपीएस हिंदी आप तक लेकर आता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों के कई और संदेश भी मेरे पास आ गए हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहें एसपीएस हिंदी, और लौटकर इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे।
अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
तो दोस्तों एसपीएस हिंदी के कार्यक्रम पर एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या के साथ। आइए अब आपको मिलवाती हूं विक्टोरियन मल्टीकल्चरल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस के ऑनर रोल में शामिल हुए सनी दुग्गल से, जिन्हें बहुसांस्कृतिक समाज की सेवा के लिए ये सम्मान दिया गया था।
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एसबीएस हिंदी और मैं हूं शशि कुमार। हाल ही में गवर्नमेंट हाउस विक्टोरिया में साल 2025 के लिए विक्टोरियन मल्टीकल्चरल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस का आयोजन किया गया। विक्टोरियन मल्टीकल्चरल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस हर साल विक्टोरिया सरकार और विक्टोरियन मल्टीकल्चरल कमीशन के द्वारा उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जो विक्टोरिया में बहुसांस्कृतिक सौहार्द, सहभागिता और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस साल इस अवार्ड्स का 24वां संस्करण था, जिसमें 14 श्रेणियों में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार समारोह में विक्टोरियन मल्टीकल्चरल ऑनर रोल भी जारी किया गया, जिसमें विविध समुदायों के उन चैंपियंस को स्थान मिला जिन्होंने समाज को सुरक्षित, समावेशी, बहुसांस्कृतिक और मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान दिया। इस साल इस अवार्ड को पाने वालों में कई भारतीय और दक्षिण एशियाई मूल के ऑस्ट्रेलियाई शामिल रहे। एसबीएस हिंदी पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस ऑनर रोल में शामिल एक प्रेरणादायक नाम सनी दुग्गल, जिन्हें सामुदायिक नेतृत्व, समाज सेवा और समाज में समरसता बढ़ाने में उनके योगदान के कारण उन्हें इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। तो सनी दुग्गल जी, एसबीएस हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी शुक्रिया।
सबसे पहले तो आप थोड़ा अपने बारे में बताएं।
जी मुझे यहाँ तकरीबन 31 साल हो गए जस्ट एज अ माइग्रेंट फैमिली, और 30 साल से ही समाज की सेवा में लगे हैं। निरंकारी मिशन में भी सेवा करता हूं और बाहर समाज में भी काफी चीजें हैं जिनमें मैं एक्टिवेट हूं, क्योंकि मेरा डे इन डे आउट यही रहता है। समाज के हर संप्रदाय में जाता हूं, कल्चर्स में जाता हूं, ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूं, और मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मुझे इतना हैवीली इंगेजमेंट करने को मिलती है, लोगों के साथ काम करने को मिलता है, लोगों के साथ सीखने को मिलता है, सारा कुछ करने को मिलता है। तो उस स्पेस में मैं बहुत खुश हूं और काम कर रहा हूं। और अभी जैसे जो हमारे आपातकालीन सिचुएशंस है, COVID-19 था और बुश फायर्स थी, उसमें भी काफी एक्टिवेट होके वॉलंटियर्स के साथ मिलके समाज के कार्यों में जुड़े रहे, और उस दौरान भी एक अवार्ड घोषित हुआ था मल्टीकल्चर एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में, जो कि विक्टोरियन मल्टीकल्चर कमीशन द्वारा, लेकिन वो ऑनलाइन था क्योंकि कोविड था उस दौरान। तो इस बार मल्टीकल्चर ऑनर रोल में नॉमिनेट हुए।
जी, थोड़ा इस अवार्ड के बारे में बताइए कि ये क्या है, क्यों दिया जाता है।
देखिए, मल्टीकल्चर ऑनर रोल बेसिकली इसका अवार्ड के नाम से ही है कि आप एक इंडक्ट किए जाते हैं ऑनर रोल में, और इसमें मेरे साथ और भी 15-20 जन हैं जिनको ऑनर मिला। और इस रोल में बेसिकली इतने सालों से जो कम्युनिटी में सेवाएं, समाज की सेवाएं हो रही हैं और एक्टिविटीज हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, ये सभी चीजों को मरते नजर रखते हुए सरकार ने ये ऑनर रोल इस्टेब्लिश किया था काफी साल पहले, और उस ही उपलक्ष में मेरे को किसी ने नॉमिनेट किया। और मैं तो नहीं समझता मैं डिजर्व करता हूँ इन चीजों को, लेकिन जब कोई ऐसे नॉमिनेट करके और आपको एक्लेड मिलते हैं तो इनसे एक चीज सामने आती है कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक्चुअली एक्सेप्टेड है और ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया के इंडियन डायस्पोरा के बारे में बताएं, आपका क्या अनुभव है?
देखिए, भारतीय समुदाय डायस्पोरा तो हमारा बहुत ग्रो कर चुका है विक्टोरिया में। इंडियन डायस्पोरा इज डूइंग वेरी वेल इन विक्टोरिया, इन ऑस्ट्रेलिया वाइज। और विक्टोरिया जहां हम रहते हैं, मैं वहीं की बात कर सकता हूं, यहां पर डायस्पोरा हर चीज में एक्टिवेटेड है। बहुत सी सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं जो अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, और बहुत सी ऐसे भी हैं जो समाज में रहकर समाज के ही अपने ही संप्रदाय के खिलाफ काम करते हैं। पर ठीक है, वो गुड लक टू देम। पर जो अच्छा काम कर रहे हैं वो ज्यादा हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। और मैं ये हमेशा समझता हूँ कि अपना संप्रदाय, साउथ एशियन कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी शुड ऑलवेज कम फॉरवर्ड। क्योंकि आप देखिए, अभी रिसेंट एक्टिविटीज हुई थी जिसमें एंटी रेसिज्म की रैली निकाली गई, खासकर इंडियंस का नाम भी आया उसमें, तो यही लग रहा था कि अब कितना जरूरी है कि फ्रेमवर्क में या मल्टीकल्चर स्पेस में हमारा आना, और उस आने से हमारी एक संप्रदाय के लिए एक स्ट्रांग बुनियाद रखनी। क्योंकि अगर हम फ्रेमवर्क या मल्टीकल्चर स्पेस में अपना नाम नहीं लाएंगे तो, या उसमें काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी या हमारी जनरेशंस भी इनको धीरे धीरे भूलती रहेंगी और हम अपने कल्चर से बिल्कुल टूट जाएंगे।
इंडियन कम्युनिटी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से समाज सेवा को लेकर?
देखिए जी, मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ और कहता भी हूँ कि रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट, कि आपका दिखना, आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी वाइज अगर आप इंगेज नहीं है लोगों के साथ, आप लोगों के साथ मिल नहीं रहे, बातें नहीं कर रहे, नहीं तो वो तो कहते हैं मंडे टू फ्राइडे तो 9 to 5 बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर हम अपने बच्चों को भी बचपन से यहाँ स्कूल्स में या बाहर भी कहीं हो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में ले जाते हैं। अगर आपके पास काम के बाद समय है तो मैं ये समझता हूँ कि आपको रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। काम के बाहर जाके भी बहुत सी ऐसी गतिविधियां जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नहीं कह रहे कि अपने काम के समय में अपने आप को खराब करें, या खराब इन द सेंस भी अपना यू डोंट गेट पेड इफ यू डोंट गो टू वर्क, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इफ यू कैन गो बियॉन्ड इट और आपके पास समय है और निकाल सकते हैं तो जरूर जाएं। और समाज में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमारी कम्युनिटी को करनी चाहिए, उससे नाम आगे आता है, डायस्पोरा का नाम आता है, इंडियन डायस्पोरा हो कुछ भी, और ऐसे ही कल्चर में भी हमारे बच्चे अवेयर रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हम ईद, दिवाली और होली और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे त्योहार और सिखिज्म के मनाते हैं, तो हम गुरु नानक देव जी का बर्थडे, तो हम ये समाज अपना आगे लाके मल्टीकल्चर स्पेस में दिखा रहे हैं और वो हो भी रहा है, उसको और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए।
वे समाज के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ उदाहरण देकर बताइए।
बहुत सा काम है, मेरी अपनी फाउंडेशन है कम्युनिटी रिस्पांस ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन चैरिटीज कमीशन में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उसकी बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसी में काम कर रहा हूँ। उसमें हम जाके लोगों को पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल गुड्स देते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, मेंटल वेलबींग के क्लासेस चलाते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की जरूरतें हैं हर ढंग से, हर तरीके से वो पूरी करते हैं। कहीं लोगों को अभी देखे समाज में कितना कुछ चल रहा है, हमें लगा भी कोविड में सब शांत हो गया, कोविड के बाद तो बल्कि ज्यादा जरूरत रही, क्योंकि कई लोग तो उस वक्त गवर्नमेंट प्रोग्राम्स पे रहे और ग्रांट्स वगैरह आती रही और कहीं ना कहीं वो घर पे रहकर भी यू बीन लुक्ड आफ्टर, लेकिन उसके बाद कई लोगों की जॉब्स गई, कई लोगों को अच्छे से काम नहीं मिला, तो दे वर सफरिंग. तो उस स्पेस में आपकी फाउंडेशन या आपका समाज या आप खुद जाकर भी बहुत सा समाज से भी काम कर सकते हैं. क्लीन अप ड्राइव्स होती हैं, ब्लड ड्राइव्स होती हैं जो हमारा मिशन भी करता है, और उस स्पेस में भी हम जाकर बहुत ही अच्छे ढंग से, ज्यादा नहीं मांगती कम्युनिटीज, ज्यादा नहीं कहते, लेकिन जो वल्नरेबल लोग हैं, अगर आपका दिल करता है और आपको अंदर से होता है कि मुझे किसी की मदद करनी है, तो बाय ऑल मीन्स जरूर जाकर आप काम कर सकते
जी. और एक सवाल ये था कि जब आप समाज के काम करते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से चैलेंजेस मिलते हैं, क्या चुनौतियां आती हैं?
देखिए जी, समाज सेवा में चुनौतियां ही हैं. पहली बात तो कोई भी चीज पैसे के बगैर आगे बढ़ती नहीं. अगर आपके पास फंडिंग नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते. और फंडिंग के बगैर तो आप ना घर चला सकते हैं ना बाहर चला सकते हैं. तो फंडिंग इज वेरी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब ये नहीं कि सरकार हर वक्त फंडिंग बांट रही है, पर जब बांटती है तो उसका मैक्सिमम यूज, प्रॉपर यूज और इक्विटल्स होते हैं, रिपोर्टिंग होती है, उसको हमने ढंग से चलाना है. अगर हमें फंडिंग रिसीव हो जाती है, अगर नहीं होती तो स्टेक होल्डर्स जो आप पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने आपके साथ जुड़ के पैसे लगाए हैं समाज सेवी कार्यों में, उसको ढंग से चलाएं. क्योंकि चैलेंजेस ये हैं कि अगर अगर आपके पास खुद नहीं आप स्टैंडिंग स्पेस में हैं, तो आप किसी और की कैसे मदद करेंगे? और अगर आप किसी को बोलो कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं, तो लोग ज्यादातर आपको इग्नोर कर देते हैं. तो मैं यही बेनती करता हूं, यही मेरी विनती है सभी श्रोताओं से जो सुन रहे हैं, कि अगर कोई आपको अप्रोच करता है कि मैं ऐसा कुछ कार्य करना, उसे सपोर्ट करें. फाइनेंशियली कर सकते हैं, इमोशनली कर सकते हैं, वॉलंटियरिज्म में तो जरूर. उसका चैलेंजेस मत आने दें, क्योंकि आपको नहीं मालूम वो कौन किस कारण से ढूंढा है. लेकिन हाँ, बैकग्राउंड चेक करने जरूरी है, आप करें. और अगर आपको ठीक लगता है तो उस चैलेंज में उनका साथ दें.
और अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
श्रोताओं को मैं क्या संदेश दूंगा जी, ये अपने आप सभी टैलेंटेड है, प्रोफेशनल्स है. मैं तो सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि जितना ज्यादा हैवीली हम पार्टिसिपेट करना कर सकते हैं कम्युनिटी इवेंट्स में, एंगेजमेंट्स में, उसमें करें. और अगर आप खुद नहीं कर रहे तो किसी और को रोके भी ना. ये भी एक आजकल देखने को गया कि ये देखो जी, ये तो 24 घंटे या उस चीजों में लगे हैं. भाई वो उसका पैशन है, उसका कंपैशन है, वो जिस मर्सी से, जिस ध्यान से लगा है, उसको लगे रहने दे. बल्कि उसको उकसाए. अगर आपके बच्चे कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो उनको भी आगे करें. क्योंकि अगर हम समाज में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, दिखेंगे नहीं, और जैसे भी हमारा एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडियन डायस्पोरा से नहीं है, तो आप कोशिश करें कि अपनी रिप्रेजेंटेशन आगे लाएं. और अगर एक बंदा खड़ा हो जाता है कहीं से भी, तो समाज पूरी उसकी हेल्प करे. ये नहीं कि उसके खिलाफ जाके हम भी अपना उसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में फंस जाए, बल्कि हम उनको सपोर्ट करें. यही मेरा संदेश है जी.
जी सनी दुग्गल जी, SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
शुक्रिया शशि जी.
सनी दुग्गल जैसे समाज सेवी के प्रयास यह साबित करते हैं कि समर्पण, सेवा और सहयोग से हम एक अधिक समावेशी और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं. साल 2025 के विक्टोरियन मल्टी कल्चरल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस ने यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे कला हो, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक सेवाएं या सामुदायिक नेतृत्व, हर क्षेत्र में मल्टी कल्चरल विक्टोरिया की पहचान और मजबूत हो रही है. इसी के साथ शशि कुमार को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए SBS हिंदी.
तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये अंश पसंद आया होगा. इसी के साथ संदेश आया है पीयूष जी का. लिखते हैं, भव्या जी, हाउ आर यू, मैरी क्रिसमस इन एडवांस. तो क्रिसमस की आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, मैरी क्रिसमस. और कह रहे हैं कि क्रिसमस ही गाने बजाइए. तो क्रिसमस ही गाने तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यदि आपके दिमाग में कोई गाना है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं. आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इसके अलावा एक और संदेश मुझे आया है राजेंद्र वोहरा जी का, जिन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया है. आज के शो में तो नहीं चला पाऊंगी, लेकिन ये जो गाना है ये कल के शो में पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए लेकर आए. आपके संदेश के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी. एक बार फिर से आप सभी का SBS हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जितने भी श्रोताओं ने आज अपने संदेश मुझे भेजे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और जल्द हमारी मुलाकात होगी नए गानों के साथ, नई खबरों के साथ और नए मुद्दों के साथ, जहां पर हम चर्चा करेंगे.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।